الحمد لله. चलते अपनी सीरीज की तरफ, और इसमें आज अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी को और करीब से देखेंगे, और अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हम सब्र का लेसन लेंगे, क्योंकि सब्र की हमें भी बहुत जरूरत होगी. और सब्र कैसे किया जाता है, और जो हम फौरन जल्दी से कहते हैं ना, कब तक सब्र करें, अभी जरा सी बात होती है तो कहते कब तक सब्र करूं, अब नहीं सब्र होता. तो कब तक सब्र करें, ये अय्यूब अलैहिस्सलाम से सीखें, कब तक सब्र करें, उन्होंने एक दफा भी नहीं कहा. तो देखते हैं, बीबी दूर से चलती भी इस तरफ आ रही थी जहां पैगंबर अय्यूब जमीन पर बेबसी से पड़े हुए थे. वो दिन भर की थकी हारी थी, किसी घर के काम करके फारे होके अब इस छप्पर में आई जिसको उनका घर कहते थे. आके कहने लगी, आज आपके लिए गरम गरम रोटी लाई हूं, अभी मैंने बेगम साहिबा के लिए रोटी पकाई थी. उन्होंने पैगंबर अय्यूब को सहारा देकर उठाया. वो खामोश थे, हमेशा इसी तरह खामोशी से तकते रहते थे. बीबी ने थैला खोला और उनके आगे रोटी रख दी. पैगंबर ने रोटी की तरफ देखा और फरमाया, आज ज्यादा रोटी लाइए. कहने लगी, हाँ, मैं जितनी देर में रोटी बना रही थी, बेगम साहेब का बच्चा उतनी देर सो गया, तो मैं उसकी भी टिकिया ले आई. अय्यूब फौरन बोले, अभी जाओ और वापस करके आओ. बोली, लेकिन बेगम साहिबा ने मुझे खुद ये दी है, क्योंकि बच्चा तो वैसे भी सो गया था. पैगंबर ने इसरार किया, बच्चा जब उठेगा तो शोर करेगा, अपनी टिकिया मांगेगा, तुम अभी जाओ और अभी के अभी जाके लेकर आओ. बीबी ने लंबी सांस खींची, लगता था वो बहुत थकी हुई है, मगर फिर भी खड़ी हो गई. जल्दी से रोटी वापस थैले में डाली और बस्ती की तरफ रवाना हो गई. अय्यूब अलैहिस्सलाम वापस वहीं लेट गए. मैंने सोचा, मैंने तो कभी अपने घर काम करने वालियों के हालात जानने की कोशिश नहीं की, कभी ये नहीं जानने की कोशिश की कि उनकी जिंदगी कैसी गुजर रही है. कभी वो अपने मसले बता भी देती तो दो हमदर्दी के बोल बोल के फिर कह दिया करती थी, चलो उठो अब जाके काम करो. मगर ना जाने कौन कितना मजबूर होता है, उसके हालात क्या होते हैं, इसका अंदाजा कभी मुझे अपने आरामदेह घर में रहते हुए हो ही नहीं सकता था. मुझे हमेशा ऐसे लगता था जैसे जो मुझे मिला है वो मेरे पास हमेशा रहना है, और ये गरीब लोग तो इसके आदी हैं, इन्हीं हालात में रह रह के इनको अब कोई एहसास नहीं होता. लिहाजा चूंकि इनकी तो किस्मत में ही दुख उठाना है और इसी तरह रहना है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. मैंने कभी इनके घरों में जाकर देखा नहीं था कि इनके हालात कैसे हैं. लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि वो भी इंसान है और वो भी इस बात के हकदार हैं कि वो अच्छे तरीके से रहें, और इनको भी दुख होता है, और कभी भी कोई दुखों का आदी नहीं हो जाता। बस हालात उसको ऐसा कर देते हैं कि वो दुख सहने का, उसका बोझ उठाने का आदी बन जाता है। कुछ देर में बीबी हांफती कांपती वापस पहुंची, ऐसे लगता था दौड़ती भी आ रही है। शायद ये गई हैं और जस्ट टिकिया पकड़ाकर वापस आ गई। ये कैसी औरत है, चाहती तो शौहर की बात का इनकार कर देती, चाहती तो शौहर को सुना देती कि मैं इतनी थकी हुई आई हूं सारा दिन काम करके, अब फालतू में जाने की क्या जरूरत है। चाहती तो जाती ही ना, अय्यूब तो खुद इतने बेबस हैं, वो क्या कर लेते। बीबी आके कहने लगी, आपने सच कहा था, बच्चा उठ गया था और बहुत शोर कर रहा था अपनी टिकिया के लिए, और हाँ एक और बात, जब मैं वापस लौट रही थी तो रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग मिले, वो किसी जगह के हकीम हुआ करते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे शौहर पर जो बीमारी आ गई है, कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास एक इलाज है। पैगंबर अय्यूब हिम्मत करके बोले, क्या इलाज है। कहने लगी, उन बुजुर्ग ने बताया, ये दूसरे शहर में एक कबीला है, उनका जो बुत है, सुना है जो जाके वहां पर कुछ मांगता है उसके आगे तो उसकी मुराद पूरी हो जाती है। बुजुर्ग ने कहा है, आप वो करना कुछ नहीं है, बस एक मक्खी उस देवता के नाम पे मार देंगे तो आपको शिफा हो जाएगी। ये सुनना था कि पैगंबर अय्यूब गुस्से में आ गए और बोले, शैतान मरदूत का जादू चल गया तुम पे, अगर मैं तंदुरुस्त हो गया तो तुझे 100 कोड़े मारूंगा। मैंने इनको ऐसे गुस्से में बात करते हुए पहले कभी नहीं देखा। बीबी एकदम खामोश हो गई, फिर कुछ देर ठहरने के बाद कहने लगी, आप अल्लाह ताला से दुआ क्यों नहीं करते, आखिर आप उसके नबी हैं, इतने साल गुजर गए, आप इस तकलीफ को सह रहे हैं, आप दुआ करें। पैगंबर का गुस्सा अब ठंडा हो चुका था, आहिस्तगी से बोले, 70 साल तक मेरे रब ने मुझे सेहत दिए रखी, अब अगर चंद साल इस हाल में रखा है तो क्या मैं सबर ना करूं। बीबी ने यह सुना तो कांप गई, इतना सबर कैसे हो सकता है, इस हालत में तो एक एक दिन गुजारना मुश्किल है, हफ्ते गुजर रहे हैं, महीने गुजर रहे हैं, साल गुजर रहे हैं, कोई हिसाब नहीं, सुबह और शाम एक ही जैसी हैं। और पैगंबर का हाल देखें कि सिवाय सब्र और शुक्र के कोई बात इनकी जुबान पर नहीं होती। सब्र कहने को तो एक लफ्ज है, मगर जब इंसान पर मुसीबत पड़ती है तो यही सबसे मुश्किल काम है, इसके लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत है, बहुत बर्दाश्त चाहिए, बहुत हौसला चाहिए। मैंने सोचा वाकई ये बड़े लोगों का ही काम है, वरना मेरे जैसे लोग तो छोटे छोटे मसलों पर ही इतने उदास हो जाते हैं। जरा सी चीज का नुकसान हो जाता है तो दिनों तक गम मनाते हैं। इधर इनका घर बार चला गया, कारोबार चला गया, जानवर खेतियां सब लुट गया, फिर भी सब्र। और यही नहीं, इसके बाद इससे भी बढ़ के ये कि औलाद का गम अपनी जिंदगी में देखना से बढ़ के कोई सदमा नहीं हो सकता। कोई एक प्यारा भी जुदा हो जाए तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है, और इनके सभी बच्चे दुनिया से चले गए। ऐसे में तो इंसान सोचता है कि अब मेरे जीने का भी क्या फायदा, वो तो मरने वाले के साथ ही मर जाता। मगर इनके सब प्यारे एक एक करके रुखसत हो गए, सबके ऊपर मकान की छत गिर गई। और ये फिर भी सबर से हैं, मुसीबत एक थोड़ा ही है इन पर, गम पे गम है। अब बीमारी को ही ले लो, बीमारी भी कैसी कि लोग घिन खाएं। तीमारदारी और हमदर्दी के दो बोल बोलना तो दूर की बात, उल्टा लोग जब तौबा तौबा करते हुए दूर भागते हैं तो कैसे दिल छलनी हो जाता है इनका। क्या गुजरती होगी इनके दिल पर, बीमार को तो लोगों की हमदर्दी चाहिए होती है, हौसला चाहिए होता है, और कहाँ लोग घिन का है जैसे किसी अछूत से। मुझे याद है जब मैं बीमार हुई थी, मैंने तो सारा घर सर पे उठा लिया था, और कोई मुझे अगर ना पूछता तो इतनी शिकायत करती, इतनी सुनाती कि खून सफेद हो गए हैं, मतलब ही लोग हैं। और इधर इनको देखो, इनके पास कोई बात तक करने वाला नहीं। बात करना तो दूर की बात, ऐसी जगह पे इनको फेंक गए हैं जो किसी नबी के लायक नहीं कि वहां रहें। अल्लाह के पैगंबरों की शान तो बहुत बुलंद होती है, और इनका यहां रहना, इनके तो मकाम और मर्तबे ही बहुत बुलंद है। और इतनी सारी मुसीबतों के ऊपर एक और मुसीबत ये कि मोहताज हो गए। जब तक बीबी साहिबा आके इनको उठाती नहीं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ना खा पी सकते हैं, ना अपना कोई काम कर सकते हैं, हत्ता के रफा हाजत तक के लिए ये बीबी का सहारा लेके उठते हैं। और मोहताजी तो खुद अकेले ही ऐसी बला है कि जिससे मैं तो हमेशा अपने लिए पनाह मांगा करती थी कि अल्लाह मुझे मोहताज ना करना किसी का, किसी पर ना डालना, और ये मोहताज पड़े में जो खुद इतनी तकलीफ दे बात है, और फिर मोहताजी के साथ साथ ऐसी तकलीफ दे बीमारी, जिस दर्द से ये गुजर रहे हैं, जब जख्मों में कीड़े पड़ जाए, दर्द का आलम क्या होगा। और इनके पास कोई पेन किलर नहीं, इनके पास कोई ऐसी दवा नहीं और कोई इलाज नहीं। हाँ, अल्लाह ताला ही कोई मुआवजा दिखा दे तो ये ठीक हो सकते। मैंने सोचा कितनी मुसीबतें हैं इनके ऊपर, कोई एक चीज भी तो ठीक नहीं, सभी कुछ हर तरफ से यूं लगता है इन पर आ पड़ा है। हर तरफ से बलाओं ने इनको घेर लिया। आज बीबी साहिबा को आने में बड़ी देर लग गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम बार बार उस रास्ते की तरफ देख रहे हैं जहां से बीबी रोजाना आती हैं। कुछ ही देर में बीबी आती भी दिखाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी जैसे बहुत थकी हो। इस मुशक्कत ने जैसे इनको बूढ़ा कर दिया था। मगर ये भी कैसी औरत है। अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र तो है ही, इनके ऊपर भी आफरीन है कि कोई शिकायत नहीं। और आज तो इनके पास पहले से ज्यादा बड़ा थैला है। उन्होंने लाके थैले को रखा और सलाम करके अय्यूब अलैहिस्सलाम को सीधा करके बिठाया। फिर थैला खोल के खाना निकालने लगी। आज मुझे देर हो गई, आहिस्ता से बोली। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने खाने की तरफ देखा और फरमाते हैं, ये तो आज मामूल से ज्यादा खाना है और काफी अच्छा लग रहा है। बीबू बोली, बस मैंने एक घर का काम कर दिया था इसलिए। इसके बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनके हाथ से खाना खाया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और लेट गए। बीबी आज कुछ गुमसुम सी हैं। उन्होंने शौहर के मुंह को साफ किया, खाना उठाया, हाथ पहुंचे और ऐसे ही वहीं लेट गई जैसे पता नहीं कब से उन्होंने आराम नहीं किया, जैसे सदियों से वो यही मेहनत कर रही हैं। वाकई मुश्किल के दिन बहुत भारी हो जाते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं। अगले दिन फिर वही काम, फिर वही रूटीन। मैंने सोचा कब तक ऐसा चलता रहेगा। मैं तो सिर्फ देखने वालों में हूं और मुझसे सब्र नहीं हो रहा। ठीक है, अल्लाह ताला की रहमत से मैं मायूस नहीं होती, मगर इनके दिन कब पलटेंगे, कब आएगी अल्लाह की रहमत। अगले दिन बीबी फिर इतना खाना ले आई और लाकर थैला उसी तरह खोला, उसी तरह खाना खिलाने के लिए निवाला तोड़ा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस दफा देखा तो पूछा, ये फिर खाना इतना ज्यादा और इतना उम्दा। बोली, हाँ मैंने आज फिर किसी के घर काम ज्यादा किया, उन्होंने ही दिया मुझे ये। इस बार अय्यूब अलैहिस्सलाम को कुछ तशवीश थी। कहते हैं, मैं नहीं खाना खाऊंगा जब तक तुम बताओगी नहीं कि ये कहाँ से आया, इसके पीछे क्या है। बीबी ने निवाला रख दिया और अपने सर से दुपट्टा उतारा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने देखा उनके सर के बाल सब कट चुके हैं। इस कदर दुख उनके चेहरे पर नमूदार हुआ, घबराहट, बेचैनी, ये क्या हुआ। बीबी कहने लगी, दरअसल मैं सारा दिन काम की तलाश में एक से दूसरे घर जाती रही, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। शाम को पलट रही थी
और आपकी भूख का भी एहसास था, तो मैंने अपने बालों की एक लट काट के एक अमीर लड़की के हाथों बेच दी। उसी ने कल खाना दिया था और आज फिर ऐसा ही हुआ, और दूसरी लट भी काट के बेची और ये खाना लेकर आई। अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए जैसे ये बात इसकी कदर तकलीफ दे थी, उन्होंने अपना सर झुका दिया और आंसू टप टप उनकी आंखों से बहने लगे। करते भी तो क्या करते, आज बेबसी और मजबूरी की ये हालत हो गई थी कि बीवी को अपने बाल भी बेचने पड़े। और खुद इनका ये हाल था कि अब तो इनके जख्मों से भी बदबू उठने लगी थी। जो कोई जानता ना होता वो यहां से अगर गुजरने लगता तो बदबू की वजह से नाक पर कपड़ा रख लेता, और जिनको पता था कि ये यहां पड़े हुए हैं वो तो दूर दूर से देखते रहते। कभी कभार कोई लोग खड़े होके ऐसे नजारा करते जैसे कि ये कोई ऐसी चीज है जिसका तमाशा देखा जाए, फिर फजूल किस्म के तबसरे करते और चले जाते। लोगों का बस यही काम था कि वो तबसरे करें। वाकई लोगों की बातें सहना भी एक बड़ा सबर आजमा काम था, खास तौर पे एक ऐसे इंसान के लिए जो पहले ही दुखी हो। मगर लोग कहाँ इस बात को कभी सोचते हैं। शायद इन्होंने कभी जाना ना हो कि अय्यूब के दिल पर क्या गुजरती है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की हिम्मत की दाद दिए बगैर मैं रह नहीं सकी। इतनी हिम्मत सिर्फ एक पैगंबर कर सकते हैं। आज के दिन कुछ लोग इस तरफ आ निकले हैं, ये शायद बस्ती के कोई अमीर लोग हैं। इन्होंने पैगंबर अय्यूब को दूर से देखा और कानों को हाथ लगा रहे हैं, फिर एक दूसरे से कहने लगा, बस इसमें कोई खैर होती तो भला इस हाल को पहुंचता। दूसरे ने बड़ी नागवारी से मुंह दूसरी तरफ करके कहा, जरूर इसने कोई गुनाह ही किया होगा जब भी इस हाल को पहुंचा है, वरना तो अच्छा भला हुआ करता था। पता नहीं क्या गुनाह हुआ इससे। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इनकी बातें सुनी तो तड़प गए हैं, आंखों में आंसू हैं। यूं लगता है बीमारी की तकलीफ से ज्यादा इनको लोगों की बातों ने दुख दिया। इस वक्त इनकी जुबान से ये अल्फाज निकले, रब्बी अन्नी मस्सनी यदुरु व अंत अरहमुर राहिमीन। ए मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची और तू तो रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला। मैंने देखा वो सजदे में गिर पड़े हैं और रो रो के यही दुआ करते जा रहे हैं। फिर फरमाते हैं, ए अल्लाह, मैं अपना सर सज्दे से नहीं उठाऊंगा जब तक तू इस मुसीबत को दूर ना कर देगा जो मुझ पे आई है। या अल्लाह, मेरी तो ये हालत थी कि मैं दो लोगों को राह चलते झगड़ा करते देखता था और उनमें से कोई तेरा नाम ले लेता था और तेरा नाम लेके कसम खा लेता था तो मैं घर जाके उसकी तरफ से कफारा कर देता था कि ऐसा ना हो इसने तेरा नाम नाहक लिया, झूठी कसम खाई हो तेरे नाम को बीच में रख के। ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ ने छू लिया। हाँ, तू तो तमाम रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला। मुझे इनकी बेबसी देखकर इतना दुख हुआ, मैंने किसी को आज तक इस तरह नहीं देखा था। खुद मेरे दिल से पुकार उठी, हाय इनकी आजमाइश कब खत्म होगी? अब तो बहुत वक्त हो गया, ना जिंदगी खत्म हो रही है और ना ही इनकी ये आजमाइश। मेरे देखते ही देखते इनके पास पानी का एक चश्मा फूट निकला। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और जल्दी से इसको पीने लगे और जिस्म पर मलने लगे। जिधर जिधर पानी का असर जा रहा था, उनके जख्म भरते जा रहे थे, उनकी बीमारी दूर हो रही थी, नई जिल्द आ रही थी। कुछ ही देर में ऐसे लगा जैसे वो कभी बीमार नहीं थे। हशाश बशाश होके खड़े हो गए। बीमारी के जाते ही हिम्मत भी लौट आई। आज कितने अरसे बाद ये अपने पैरों पे खड़े होके बगैर सहारे के यूं नजर आ रहे हैं जैसे कोई सेहतमंद इंसान हो। मुझे उनको देखकर इतनी खुशी हुई। वाकई जब अल्लाह ताला दिन पलटता है तो ऐसा लगता है कि कभी मुश्किल आई नहीं थी। करीब ही एक बहुत खूबसूरत कीमती लिबास पड़ा हुआ नजर आया। ये कौन लाया होगा? हो सकता है अल्लाह ताला के फरिश्ते लाए हों, वरना इस गंदगी के ढेर के पास इतना खूबसूरत लिबास कैसे आ सकता है? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने लिबास देखा तो खुश हो गए। कब से ये वो सीधा कपड़े पहने हुए थे जो अब जगह जगह से फट भी चुके थे। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और बड़ी खुशी से इस लिबास को पहन लिया। अब तो ये वो लग ही नहीं रहे थे जो चंद घंटे पहले थे। इनकी चाल ढाल हाल हुलिया सब बदल गया था। कहाँ वो अय्यूब जो उठ भी ना सकते थे और सारी जिल्द पर फोड़े पिंसियां थे, और कहाँ ये अय्यूब जो जवान तनोमंद हसीन। कुछ देर पहले तक तो ये उठ के मुंह में निवाला तक डाल नहीं सकते थे, और अब चलते हुए कूड़े करकट से दूर एक साफ सुथरी जगह पर एक बड़े पत्थर पे जाके बैठ गए। वाह मेरे रब, तेरे देने के रंग भी निराले हैं। तू दे तो वैसा दे कोई नहीं सकता। फिर इंसान हैरान रह जाता है। कुछ देर ही गुजरी थी, बीबी मामूल के मुताबिक थकी हारी आहिस्ता आहिस्ता चलती भी वापस आती दिखाई थी। वो सीधी उस जगह पे गई जहां पे शौहर को छोड़ के गई थी, मगर फिर कुछ परेशानी और कुछ हैरत में इधर उधर देखने लगी कि छोड़ के तो यहीं गई थी, अब चले कहाँ गए? फिक्र से कभी उधर दौड़ के जाती कभी उधर, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम का तो कहीं नामो निशान तक नहीं था। बीबी की बेचैनी बढ़ रही थी, यूं लगता था अभी रो पड़ेंगी। हर जगह तो देख लिया था, कहीं पे भी नजर नहीं आए। आखिर उधर कोई नहीं मिला तो इधर को आ गई। जहां पे अय्यूब अलैहिस्सलाम बैठे थे। कहती हैं, ए अल्लाह के बंदे, मेरा शौहर बीमार और बेबस यहां पड़ा हुआ था, तुम्हें कुछ पता है उनका? हाय, कहीं उनको भेड़िया तो नहीं खा गया, कहीं उनको कुत्ते तो नहीं ले गए? बीबी की आवाज कपकपा रही थी। इतने साल इस औरत ने अपना दिन और रात अपने शौहर के लिए कुर्बान कर दिया था, अब इनको यहां ना पाके यूं तड़प रही थी। यूं लगता था अभी शायद सदमे से गिर पड़ेंगी। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीबी की तरफ देख के फरमाया, नहीं, किसी भेड़िए ने उसको नहीं खाया, वो बीमार मैं ही हूं। बीबी की आंखों में आंसू आ गए, गम भरे लहजे में बोली, है नौजवान, मुझ दुखिया से क्यों मजाक करता है, मैं तो पहले ही गमों में हूं। अय्यूब अलैहिस्सलाम बीबी के करीब जाके बोले, अब गम ना करो, दुख के दिन दूर हो गए, मेरे अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है और ये रंग रूप उसने दे दिया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो अब घर चलें, अल्लाह ताला ने हमारा सब माल असबाब लौटा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक ये किस्सा मुकम्मल होता है, और ये उन तमाम लोगों के लिए जो किसी भी मुश्किल में है, मुसीबत में है, गमों में है, उनके लिए बहुत बड़ा सबक अपने अंदर रखता है। कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना, हालात चाहे कितने ही खराब हो जाएं, मगर अल्लाह ताला जब चाहे हालात को बदल सकता है, और कभी भी अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली बलाओं की वजह से उससे बदजन ना हो। जब आप पे कोई मुश्किल आए, अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद कर लिया करें, वो किस किस इम्तिहान से नहीं गुजरे ये सोच लिया करें, फिर भी उन्होंने मायूसी नहीं दिखाई। और लोग जब आपको ताने दें कभी, तो तब भी इनको याद किया करें। अक्सर सिर्फ बीमारी के उसके अंदर इनको याद किया जाता है कि इनकी बीमारी बहुत थी, बीमारी में इन्होंने सब्र किया। इस किस्से से हमें पता चला कि सिर्फ बीमारी पे सब्र नहीं किया था, बहुत सारी चीजें थी जिनके ऊपर ये सब्र करने वाले थे, और बाज दफा जिस्मानी बीमारी से भी ज्यादा लोगों की चुभती हुई बातें होती हैं जो इंसान को तकलीफ देती हैं। तो उन हालात के लिए भी आपको इनकी जिंदगी में बहुत बड़ी रहनुमाई मिलेगी। और फिर देखें, उन्होंने जो दुआ की तो ये नहीं फरमाया कि अल्लाह मुझे अच्छा कर दे, बस है अल्लाह तू रहम रहम करने वालों में बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, और मुझे तो तकलीफ़ ने आ लिया, इसमें भी कोई शिकवा नहीं। सुभान अल्लाह, ये जो सारे वाकयात इसमें बयान किए गए, ये सब तफसीर की किताबों में आपको मिल जाएंगे, आप उनसे देख सकते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।